कोई मसला नहीं है, मैं अकेला भी रिजाइन करके सड़कों पर जाऊंगा, मैं सिस्टम में नहीं बैठूंगा जो ये है। ये अंदर एक FIR जिस पे बंदे लगी हुई है, फर्द जुर्म उस पर आयद हो रही है, और आज उसे मैसेज जा रहा है कि आज प्रोसिक्यूटर कोर्ट में नहीं जाएगा क्योंकि मुजरम साहब जो हैं वो मसरूफ हैं पीएम हाउस में और पार्लियामेंट हाउस में, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन रहे हैं। ये हमारे मुल्क का ये मेयार है। ये कल दुनिया की अखबारों में ये रिपोर्ट होगा। आज आपने देख लिया यहां CP24 पे क्या रिपोर्ट हुआ है, उन्होंने कहा डिसग्रेस नवाज शरीफ का भाई शहबाज शरीफ ने आज जो है हल्फ लिया है। अभी उसके बाद कहानियां खुलेंगी। लोगों को पहले तक नहीं पता था क्या था, अब सुबह के अखबारात में, अब दुनिया भर के अखबारात में देखिएगा, वो सारी FIRें छपेंगी, वो मकसूद चपरासी वाले जो केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के वो छपेंगे, और फिर दो चार दिन बाद जब इनके साहबजादा साहब हमजा साहब पंजाब में हल्फ उठाएंगे फिर वो रिपोर्टें छपेंगी। ये सारा कुछ जो बाहर दुनिया में जाएगा, क्या पाकिस्तान का कोई अच्छा इमेज होगा? बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। ये मुस्लिम लीग नून के अंदर से कोई और बंदा ले आते शायद इतना लोगों की रिजेंटमेंट ना होती। ये मेरे ख्याल में इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं ये चीजें। कल लोग इसलिए बाहर निकले थे कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई, उसके उस लेटर की इशू को समझा नहीं गया, किसी ना अदालत ने समझा ना आर्मी ने हेल्प की, सारे इदारे उसके खिलाफ हो गए, और उसने पीएम हाउस से उठते हुए जर्नलिस्टों को बुलाकर पूछ लिया उनसे कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो। उन्होंने कहा नहीं, कोई नहीं रह गया, सारे आपके खिलाफ हो गए हैं। उसने डायरी उठाई और चला गया। कल उस एक एक्ट की वजह से दुनिया बाहर निकली थी, आज उसमें ये चीज ऐड हो गई है कि एक बंदे ने जिसपे 16 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं और उस पर आज फर्दे जुर्म आयद होनी थी, और आज हमारे सिस्टम ने, हमारे इस बोसीदा निजाम ने उसे वज़ीरे आज़म पाकिस्तान का हलफ दे दिया।
जी अच्छा फियाज भाई, इसमें दो बातें अब हैं जो मैं कल भी देख रही थी, उसमें तो लोगों का ज्यादा शिकवा यह था कि ये करप्ट लोग हमारे ऊपर कब तक करेंगे, और क्या ये ही अब हुकूमत करते रहेंगे बाकी सारी जिंदगी भी, हमारे बच्चों को चांस कब मिलेगा? यू नो ये बड़ी उसके अंदर जो थी एक वो थी, एक तो करप्शन के ऊपर लोग भड़के हुए थे, और एक ये कि ये ही मुड़ मुड़ के अगर आते जाएंगे तो हमारा बच्चा कब राइज करेगा, यू नो, जैसे कि दूसरे मुल्कों में होता है। एक
बिल्कुल बिल्कुल।
और दूसरी बात ये थी कि लोगों ने कल जो आप ये 35 मिलियन ट्वीट्स आपने बताई हुई हैं, उसके अंदर मिलिट्री जो एस्टैब्लिशमेंट है हमारी उसको भी बहुत लताड़ा हुआ था। यानी वैसे तो मिलिट्री का माशाल्लाह का हमारा किरदार ये रहा है कि हर चीज में हर वक्त वो आके इंटरफेयर करते थे, ये जिस मौके पे खड़ा होने की जरूरत थी वो नहीं थे। तो कल जनरल बाजवा के बारे में बेशुमार ट्वीट्स थी, क्योंकि शायद खबर ये भी आ रही है, अलेजली आई एम नॉट श्योर, ये खबर आ रही है कि शायद ये मुल्क से चले जाएंगे और बाहर किसी मुल्क में जाके बस जाएंगे, तो क्या कहते हैं आप इसके बारे में?
ये जो अफवाहें होती हैं वो तो लोग तो कहते हैं जी बेल्जियम में उन्होंने विला खरीद लिया है, ये हो गया वो हो गया, इस तरह की अफवाहें तो होती हैं, ये तो चलती रहती हैं। वो जब तक जाएंगे नहीं उस वक्त तक हम नहीं कह सकते कि वो जाएंगे, वैसे भी उन्होंने रिटायर तो होना है आफ्टर फ्यू मंथ्स, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो शदीद टेंस होंगे, वो इंतहाई उनमें जो है ना वो उसमें होंगे। इसमें वो रिजाइन कर सकते हैं वक्त से पहले और जा सकते हैं, किसी और को अपने नंबर 2-3 को चार्ज दे के, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कहें कि जी आप जिसको आपने लगाना है लगाने, मैं नहीं इसे कंटिन्यू कर सकता। और शायद एक और इतला थी कि DGISI ने 2 दिन पहले ही आर्मी चीफ को कह दिया है कि इस सिचुएशन में, इन हालात में मैं मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकता, और शायद वो इमरान खान के इस्तीफे के उसके बाद पीएम हाउस से जाने के बाद इतला थी कि उन्होंने कहा कि दैट्स इट, बहुत होगी, मैं इससे ज्यादा टेंशन नहीं ले सकता और मैं इसे कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी उन लोगों का भी कैरियर खराब हो जाता है ना, जिस तरह जनरल फैज हमीद का कैरियर खामखा इस बात पे खराब हो गया, उस पर लोगों ने एतराज करना शुरू कर दिया कि शायद वो इमरान खान का चहेता है, पपेट है, लाडला है, या इमरान खान को वो सपोर्ट करता है और वो उसको सपोर्ट करता है। हालांकि इतनी सी बात थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत की कि मैंने कहा एक तो ये है कि ये मेरे अंडर है अगर, तो इसकी ट्रांसफर पोस्टिंग मुझसे पूछ की जानी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, अगर हम सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, अगर मियां साहब लंदन में बैठ के आर्मी चीफ को, DGISI को इसलिए गालियां देते हैं कि वो सिविल सुप्रीमेसी के अंबरदार हैं, तो फिर मियां साहब के सारे मानने वाले और मेरी तरह के आम पाकिस्तानी जो हैं, जो सिविल सुप्रीमेसी पे वाकई यकीन रखते हैं, उन सबको इस बात पे इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन लोग नहीं खड़े हुए, इसलिए नहीं हुए कि शायद मियां साहब को खिड़की खुलती हुई नजर आ रही थी इक्तदार की, अपने लिए तो उनकी ना खुली है ना खुल सकती है, हाँ उनके भाई साहब के लिए खुल गई है और उनके भतीजे के लिए खुल गई है और उनकी बेटी जो है वो लाइन में लगी हुई है।
न्यूज आई है कि वो लंदन से पैदल चल पड़े, अब वो ठीक हो गए?
नहीं 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 नहीं, वो बड़े सिस्टमैटिक लोग हैं और उनके मानने वाले भी जो है आपको पता है वही अंधी तकलीद करने वाले हैं, जिस तरह के अब कुछ इमरान खान के भी हो चुके हैं। इमरान खान के ज्यादा उस तरह नहीं है, इमरान खान की अक्सरियत मैंने ये देखी है, वो ये कहते हैं कि हम इमरान खान के खरीदे हुए गुलाम नहीं है, जब तक इमरान खान ठीक काम करेगा हम उसके साथ नहीं है, जिस दिन उसने कोई गलत काम किया हमारी तवक्कात के खिलाफ हम उसे छोड़ देंगे, इमरान खान की अक्सरियत ये कहती है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल अंधी तकलीद करने वाले हैं, आप जरा इमरान खान के खिलाफ बात करें आपको बिल्कुल जो है ना चमट जाते हैं और आपकी जान नहीं छोड़ते और आपके साथ गंदी अल्फाज के साथ आपके साथ गुफ्तगू करते हैं, गालियां देते हैं ये पीटीआई वाले। मुस्लिम लीग नून के भी इसी तरह सख्त मानने वाले हैं। अब मियां साहब लंदन से जाएंगे सऊदी अरब।
सिर्फ तीन मिनट हम यहाँ पे जरा ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद हम वापस आते हैं।
चलिए
सॉरी आपकी बात काटी, सॉरी।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
सेहत एक अनमोल नेमत है जो हर शख्स को हासिल नहीं। जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला अफराद तंदुरुस्ती के हुसूल के लिए आपकी दुआओं और अतियात के मुंतजर हैं। इंडस हॉस्पिटल और हेल्थ नेटवर्क पाकिस्तान की आबादी के लिए उम्मीद की वाहिद किरण है जो उनकी बुनियादी सेहत का ख्याल और हर मर्ज में उनकी मदद के लिए मौजूद है। ज़कात के फर्ज से खिदमत के फरीजे तक आप और इंडस साथ साथ।
बैंक अलफला पेश करता है रोशन डिजिटल अकाउंट। अब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ये अकाउंट फौरी डिजिटली खुलवा सकते हैं। अभी www.bankalfala.com विजिट करें, आज ही अपना रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाएं। इस डिजिटल अकाउंट में जब चाहें पैसे डालें और जब चाहें पैसे वापस ले जाएं और पाएं अपने मुल्क में सरमायाकारी करने के मौके। ये बैंकिंग का नया अंदाज है और एक नए दौर का आगाज है। बैंक अलफला, रोशन मुस्तकबिल, डिजिटल पाकिस्तान।
इस हफ्ते इफ्तार रेडी करें बड़ी सेविंग्स के साथ। फूड बेसिक्स में आए और पाए 540 ml सीवर फिनिश या चिक पीस या बीन्स 4 फॉर जस्ट $5। बोना चमीम खजूर सिर्फ $1.88 ईच। लो हो गई इफ्तार रेडी और लो हो गई सेविंग्स। फूड बेसिक्स, वेयर यू ऑलवेज गेट मोर फॉर लेस।
इस रमजान सहरी हो या अफ्तारी, समोसे हो या कबाब, छोले हो, दही बड़े या फ्रूट चाट, रमजान की हर ग्रोसरी मिलेगी आपको रियल कनेडियन सुपर स्टोर में। मजीद मालूमात के लिए लॉग इन करें @realcanadiansuperstore.ca।
इस स्प्रिंग में आ गई है बैकयार्ड की बहार, क्योंकि लूज और रोना स्प्रिंग फेस्ट शुरू होने जा रहा है। तमाम गार्डनिंग एसेंशियल्स पर 30% तक डिस्काउंट और हर जुमेरात को एक नई डील का फायदा उठाएं। मार्कम, स्कारब्रो और ब्रैम्पटन के लूज और रोना स्टोर पर जाएं और $500 तक के इनाम जीतने का मौका पाएं। और आज ही लूज और रोना स्टोर पर जाएं और बहार अपने घर लाएं।
ट्रकिंग कंपनियां लई विंडजर शहर च अपना ट्रक टर्मिनल खोलन दा सुनहरी मौका। 2024 च बन जा रहे नवे विंडजर डिट्रॉयट ब्रिज तो 20 मिनट दी दूरी ते हाईवे 401 दे बिल्कुल नेड़े ट्रक टर्मिनल दी जोनिंग वाले लॉट अवेलेबल ने। तेजी नाल तरक्की कर रहे इस इलाके च आउण वाले समय च काफी सारे वड्डे प्रोजेक्ट आ रहे ने ते हो सकदा तुहानू बाद च ट्रक टर्मिनल दी जोनिंग वाली इहो जिही जमीन वाजिब कीमतां ते ना मिले। मौके दा फायदा उठाओ ते हुणे कॉल करो चरणजीत बराड़ 6473008436 6473384
Spirit McKay Menswear. Three elements does represent the brand, fit, quality and value. Only South Asian owned men's custom suiting and shirting company in Canada. Fully vertical operation, direct from factory to customer. Quality compared to Harry Rosen, Burberry and Hugo Boss. 100% Italian wool suit starting from $2.99. 100% Egyptian cotton shirt starting from $29.99. Chinos, Mariano, wool sweaters, denim jeans, corduroy shirts, trousers and more. Visit today, 1535 Merseyside Drive, Unit 19 20 Mississauga. Call 905-670-3388.
जी साहब, नाज़रीन, वेलकम बैक अगेन। एंड 8:12 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं और हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं यहाँ पर जो टीवी पे है हमें देख रहे हैं या www.eawaz.com पे देख रहे हैं हमको, तो भाई आप देख सकते हैं फयाज बलाना साहब को और ऑफकोर्स हमारी और आपकी अपनी शाजे जी हमारे साथ हैं। जी फयाज
जी, जी आप अपनी बात कंटिन्यू कर रहे हैं वहीं से। फैज भाई
मुझे याद कराना पड़ेगा मैं बात कर क्या रहा था।
वही जो आप बता रहे थे कि ये जो है जो नवाज शरीफ की पार्टी है वो उसके बारे में आप बात।
हाँ, मैं आपको बता रहा था कि ये करेंगे क्या।
हाँ जी,
मियां साहब जो है एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स जिनकी अब तक वो वजाहत नहीं दे सके कि ये कहां से खरीदे हैं, किन जराये से खरीदे हैं, उन अपार्टमेंट से निकलेंगे, सऊदी अरब जाएंगे, अल्लाह के घर में जाके अल्लाह से कुछ गुनाह पिछले बख्शवाएंगे, उमरा करेंगे, यहां से उनका खानदान, ये सब के नाम अब ECL से निकल जाएंगे आज रात को। मरियम का भी, हमजा का भी, शहबाज शरीफ और जितने लोग हैं इनके, क्योंकि ये जब जाते हैं तो पूरे लौ लश्कर के साथ जाते हैं,
क्योंकि PTI के 6 लोगों के लिए पिटीशन डाली है ना कि उनके नाम ECL में डाले जाए।
हाँ, तो ये यही तो हमारा, यही तो सारी इमरान खान की जंग है।
हाँ।
कि स्टेटस को से वो निकलना चाहता है और स्टेटस को में तो यही चीजें हैं जो ये कर रहे हैं, यही हुई है। मैं और भी बताता हूँ इन्होंने क्या किया आगे। तो इन्होंने पूरा खानदान इनका ECL से इनसे निकलेगा और उनका डालेंगे। इब्तदाई तौर पर ठीक है, डालने में कोई हर्ज नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान भागना चाहता है तो उसे रोकें, مے بی کچھ ڈاکومنٹس کچھ چیزیں یہ وہ نیا سے ملے جس کی اس کی وضاحت کرنی چاہیے اسے یہ بتانا چاہیے وہ بتائے ہی از ریسپانسبل ہی واز دا مین پرسن بیہائنڈ دیٹ گورنمنٹ بالکل اعظم خان کو روکیں شہباز گل کو روکیں وہ جو ابتدائی نام انہوں نے ڈال دیے ہیں بالکل ٹھیک ڈال دیے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس میں ہاں اس سے زیادہ اگر تجاوز کریں گے تو وہ پھر زیادتی ہوگی کہ اگر آپ سارے ہی پی ٹی آئی کے ایک ایک ایم این اے کو چن کے ان کے نام ڈالتے رہیں تو وہ زیادتی ہوگی یا جس طرح ابھی انہوں نے سوشل میڈیا پہ ان کے جو لوگ ہیں ڈاکٹر ارسلان خالد جو ان کا سوشل میڈیا کا ہیڈ تھا اس کو اس کی چھاپ گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کرنی شاید اریسٹ کر بھی لیا ہے اور بھی لوگوں کو تو یہ زیادتیاں شروع کر دی ہیں انہوں نے اچھا یہ ای سی ایل پہ ان سے نام نکلیں گے ان کے نام نکلیں گے اور یہ بھی سارے وہاں حج کرنے اپنا حج نہیں عمرہ کرنے جائیں گے رمضان کے آخری عشرے میں وہاں سے اچھی اچھی تصویریں بھی بھیجیں گے ادھر اور ان کی کوشش یہ بھی ہوگی کہ ہمیں پرنس سلیمان بھی مل لے لیکن پرنس سلیمان بھی دیکھے گا کہ مجھے ملنا ہے یا نہیں ملنا کیونکہ ادھر پاکستان میں جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے سعودیہ امبیسی جو اسلام آباد میں ہے وہ لمحہ بلمحہ انہیں رپورٹ بھی کر رہا ہوگا کہ یہ شہباز شریف صاحب آئے ہیں ایز اے پرائم منسٹر تو یہ کتنے عرصے کے لیے آئے ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ کتنے تعلقات رکھنے ہیں کیونکہ عمران خان دوسری طرف روڈ پہ ہے اور عمران خان کا کوئی پتہ نہیں کس وقت واپس آ جائے اور عمران خان کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے دوستانہ مراسم ڈیولپ ہو گئے تھے پرنس سلیمان کے تو وہ بڑے کیئرفلی اس دفعہ ملیں گے وہ پرانی والی سلسلہ نہیں ہوگا جس طرح سرور پیلس میں یہ پہلے جا کے رہتے رہے 250 بندوں کے ساتھ وہ محبت نہیں ہوگی اور ملاقات ہوئی بھی تو وہ رسمی سی ہوگی وہاں سے یہ پھر ان کی کوشش ہوگی کہ عید سے پہلے یا عید کی چھٹیوں کے دوران یا عید کے فوراً بعد ہم پاکستان پہنچیں اور یہاں آ کے پھر وہ جاتی عمرہ جائیں گے انہیں فوری طور پر اریسٹ کیا جائے گا لیکن ساتھ ہی ان کے جاتی عمرہ کی جو رہائش ہوگی اسے جو ہے وہ سب جیل قرار دے دیا جائے گا اور پھر وہ جاتی عمرہ میں بیٹھ کے ایک ملزم اپنی سزا باقی کاٹیں گے اور وہاں وہ سیاسی جلسوں کی صدارت کیا کریں گے اور وہ وہاں بیٹھ کے سارا جو ہے پاکستان کا نظام وہاں جاتی عمرہ سے چلائیں گے ایز اے مجرم آف پاکستان اور ایز اے ملزم آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب اسلام آباد پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا کریں گے اور ان کا بیٹا ایز اے ملزم آف پاکستان وزیر اعلیٰ پنجاب پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا سلسلہ چلائے گا
اچھا اس سارے سین میں آپ زرداری صاحب اور بلاول صاحب کو کدھر دیکھتے ہیں
زرداری صاحب کو اور بلاول صاحب کی بڑی سچویشن دلچسپ ہونے والی ہے میں نے آپ کو یاد ہوگا میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ایکچولی مسلم لیگ نون کو ڈیمیج کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور پنجاب میں اپنی انٹری کا راستہ بنانے کے لیے کر رہے ہیں زرداری صاحب وہ بندے ہیں کہ اگر وقتی طور پر انہیں لگے کہ وقتی طور پر اگر ایک بندے کو میں نے آگے کرنا ہی ہے اگر ایک تیسرے بندے کو گرانے کے لیے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کیونکہ زرداری صاحب کو تو پتا تھا میرے 56 ایم این اے ہیں اور 84 ایم این اے جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ہیں تو انہوں نے وقتی طور پر تو ایز اے پرائم منسٹر اسے قبول کر لیا کیا ہوا ہسٹری میں راجہ پرویز اشرف بھی تو پرائم منسٹر رہا ہے شاہد خاقان عباسی بھی رہا ہے اور یوسف رضا گیلانی بھی رہا ہے بڑے لوگ رہے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے شہباز شریف بھی چار دن بیٹھ جائے سیٹ پہ لیکن اگر شہباز شریف کو یوز کر کے عمران خان کو اقتدار سے باہر نکالا جائے اور خود وہاں پہنچ کے اگر اپنے بیٹے کو وزیر خارجہ یا خود وہ صدر پاکستان بن جائیں کیونکہ آج وہاں اسمبلی میں آپ نے دیکھا ہوگا جو ہم لوگ کہتے تھے یہ مکس اچار ہے وہ ٹھیک کہتے تھے شہباز شریف صاحب نے ابھی حلف اٹھا کے تقریر کر رہے تھے اور اس کے بعد وہاں جو نعرے بازی ہوئی اس میں نعرے کون کون سے سنے گئے ایک نعرہ تھا صدر پاکستان آصف زرداری ایک نعرہ تھا صدر پاکستان فضل الرحمان ایک نعرہ تھا ہمارا لیڈر ہمارا قائد نواز شریف ایک نعرہ تھا وزیر اعظم نواز شریف ایک نعرہ لگا وزیر اعظم مریم شریف مریم نواز شریف ایک نعرہ لگا وزیر اعظم شہباز شریف
اس میں ایم کیو ایم والے ناراض ہو گئے ہیں
ایم کیو ایم والے ناراض فوری طور پر ہو گئے ہیں کہ اگر آپ نے وہاں بے نظیر کارڈ تک کا اناؤنس کر دیا ہے پیپلز پارٹی کو اوبلائز کرنے کے لیے تو آپ نے ہمارے ساتھ جو آپ کے معاہدے ہوئے ہیں ان کی بات آپ نے کیوں نہیں کی وہ اسی وقت ناراض ہو گئے ہیں اور یہ دیکھی اور ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ ہم نے چٹ پہ لکھ کے اپنا نام بار بار بھیجا شہباز شریف کو کہ ہمارا نام لیا جائے انہوں نے نام نہیں لیا کیونکہ انہیں آصف زرداری نے منع کیا ہوا تھا ہمارا نام لینے سے اور وہ ان کے سوچنا یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ معاہدہ آج ووٹ لینے تک ہی تھا اب زرداری صاحب جو انہوں نے کراچی کے حوالے سے ہمارے ساتھ معاہدے کیے ہیں وہ ان سے بھاگ جائیں گے کیونکہ زرداری صاحب تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ جو معاہدے ہوتے ہیں یہ کوئی قرآن حدیث تو نہیں ہوتی بس معاہدے ہی ہوتے ہیں اب اعتماد کا ووٹ مل گیا شہباز شریف کو 6 مہینے کے تک اس کے خلاف کوئی نو کانفیڈنس کی نہیں آ سکتی موو اور نہ کوئی وہاں اپوزیشن والا ہے کہ کوئی نو کانفیڈنس لے کے آئے
لیکن یہ اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے ویاس بھائی کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ ود ان 30 ڈیز سوری ود ان 90 ڈیز آپ کو جو ہے وہ الیکشنز کروانے ہیں تو اب یہ جوڈیشری جو ہے یہ 6 مہینے یہ پھر سلسلے کیسے چلنے دے گی
کون سے آپ 90 ڈیز کی بات کر رہی ہیں
یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اگر ایسے نو کانفیڈنس موو آ جائے تو 90 ڈیز کے اندر الیکشنز کرائے جاتے ہیں
نہیں ایک منٹ ایک کلیئر کر لیں آپ نے اب آج انہوں نے پرائم منسٹر وہ بنے ہیں نا
جی
تو ان پہ ہاؤس نے اعتماد کیا ہے انہوں نے 174 لے لیے ہیں
अच्छा
इट मीन्स कि इस हाउस ने उनपे ट्रस्ट शो कर दिया है.
ओके ओके
नाउ ही इज सिक्योर्ड फॉर नेक्स्ट सिक्स मंथ.
ओके
सिक्स मंथ के अंदर अंदर उनके खिलाफ कोई नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं हो सकती. सिर्फ एक सूरत है अभी इस वक्त शहबाज शरीफ को निकालने की. आज अगर पीटीआई के सारे बंदे निकल जाते हैं 140-150 या जितने भी हैं, एमकेएम वाले भी रिजाइन करके निकल आते हैं, और इतने लोग रिजाइन करके निकल आते हैं कि पीछे 171 बंदे रह जाते हैं असेंबली में शहबाज शरीफ के पास, 171 रह जाते हैं, बाकी सारे रिजाइन कर जाते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी. सिर्फ ये सूरत अब बची है, अदरवाइज ही इज सिक्योर्ड फॉर नेक्स्ट सिक्स मंथ. छह महीने में वो जो करना चाहें कर सकते हैं इस्लामाबाद में अपनी गवर्नमेंट में, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता.
तो बस फिर वो स्क्वायर वन पे आ जाएंगे, फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है कैप कर दिया जाएगा, जो है ये जितने भी चोर डाकू हैं उनके नाम निकाल दिए जाएंगे, मामलात ठप कर दिए जाएंगे, नैब को बंद कर दिया जाएगा, जुडिशरी जो है उसको चुप करके बिठाया जाएगा, जो आर्मी चीफ है अपनी मतलब के ले आएंगे. तो फिर तो ये कैसे
जो न्यूक्लियर जो आप न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात कर रहे हैं ना, तो वो तो बिल्कुल समझें कि कोई फाइनल होगा ना, जब बहुत कोई स्ट्रांग बंदा बैठा हुआ होगा अमेरिका की खिदमत करने वाला. इब्तदाई तौर पर ये क्या करेंगे, ये नैब का चेयरमैन, नैब खत्म करना, या नैब के चेयरमैन तो वैसे ही बेचारा एक्सटेंशनों पे बैठा हुआ है, नैब को खत्म करना ये उनकी अपनी जरूरत है, नवाज एंड जरदारी की एंड फजलुर रहमान की, उन तीनों के खिलाफ नैब के केसेस हैं और बहुत ज्यादा केसेस हैं, कोई एक दो नहीं है, ये उनकी अपनी जाती जरूरत है, नैब को वो खत्म करेंगे, लेकिन कल तक जो गवर्नमेंट आएगी वो अपनी मर्जी का कोई एक और अकाउंटेबिलिटी का इदारा बना लेंगे, लेकिन उससे पहले ये सिर्फ खत्म नहीं करेंगे, जिस तरह पहले इन्होंने लाहौर एलडीए में बिल्डिंग को आग लगा के सारा रिकॉर्ड जलाया था, ये यहां भी अब आग लगेगी 1-2-3-4 ऑफिस में. और एक दिन आप देखेंगे कि इस्लामाबाद में जो है वो फायर ब्रिगेड वाली गाड़ियां भाग रही हैं और पता चलेगा के ब्लॉक में, आर ब्लॉक में, एस ब्लॉक में, किसी ब्लॉक में आग लग गई है. तो वो ये काम करेंगे, नैब को खत्म करेंगे, वो उनकी लोकल रिक्वायरमेंट है. इलेक्शन के हवाले से वो अपनी जो इस्लाहात करना चाहते हैं वो करेंगे फौरी तौर पर, से अपना ईवीएम को खत्म करेंगे, एक और इन्होंने किया हुआ था हमारी हमारे वोट का, ओवरसीज के वोटों वोट का ये खत्म करेंगे. इसके ये तो इमरान खान भूल जाए कि वो हमारे वोट इस इलेक्शन में यूज कर सकता है, नहीं कर सकता. और इस तरह के छोटे छोटे वो चीजें अपनी जो है वो ठीक करेंगे. मियां साहब के जो केसेस हैं या मियां साहब को जो सजा हुई है उस पर कोशिश करेंगे कि वो उनकी तायात सजा खत्म करें या कोई उसकी सूरत निकालें. मरियम की बिल्कुल जो थोड़ी बहुत उसकी मजबूरी थी वो उसकी जमानत पे थी वो खत्म होंगी. इस तरह की चीजें छोटे छोटे ये फेवर सारी लेंगे अपने, और ये सारी फेवर्स उन्हें हमारी एस्टेब्लिशमेंट और हमारी अदलिया इसलिए देने के लिए तैयार है कि वो और इमरान से बचने के लिए वो कहते हैं ठीक है कर लें. और फिर उस पर बात आती है कि ये क्यों इतना कुछ कर रहे हैं, तो फिर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट या इंटरनेशनल साजिश कॉन्स्पिरेसी की बात आती है. और फिर एक और आज दिलचस्प बात आपने देखी होगी, मियां साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि मुझे रत्ती बराबर भी शक हुआ कि ये साजिश हुई है तो मैं रिजाइन कर जाऊंगा. ये मियां साहब ने रत्ती बराबर इसी तरह ही कहा है जिस तरह वो पहले कहते थे कि मैंने एक धेले की भी करप्शन नहीं की, मेरे एक धेले की भी करप्शन साबित हो जाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, आप मेरा जो मर्जी है नाम रख लें. उससे पहले कहते थे कि मैंने अगर जरदारी का पेट काट के उसी करप्शन का पैसा ना निकाला तो मेरा जो मर्जी है नाम रख लें. अब अगर पाकिस्तान में लोग आज उनका नाम रखना चाहें तो हर बंदा कोई रख सकता है. कोई अगर उन्हें प्राइम मिनिस्टर की जगह क्राइम मिनिस्टर कह रहा है तो वो बंदा हक बजाने हुआ है. मैं नहीं कहता, लेकिन जो लोग कह रहे हैं वो मियां साहब ने खुद उन्हें हक दिया है कि अगर मैंने हुकूमत में आने के बाद प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा और क्या हुकूमत होनी चाहिए, अगर आज वो जरदारी का पेट फाड़ के उसमें से करप्शन का पैसा नहीं निकालते या उसे लड़काना लाहौर और कराची की सड़कों पर नहीं घसीटते तो फिर हर बंदा पाकिस्तान में जो शहबाज शरीफ साहब का नाम रखना चाहे रख सकता है. ये उन्होंने खुद इख्तियार दिया हुआ है हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ने. तो आज उन्होंने कहा है कि मैं तहकीकात कराऊंगा इस खत की कि अगर ये खत वाकई हमारे अगर ये खत झूठ है, और अगला फिक्र उन्होंने कहा था और यकीनन झूठ है. तहकीकात तो मुकम्मल हो गई ना, तहकीकात तो आपने अपने फिक्रे में ही मुकम्मल कर दी कि ये झूठ है. अब आप कौन सा ऐसा तहकीकाती कमीशन होगा जिसका चेयरमैन आप खुद लगाएंगे, जिसके मेंबर आप खुद सिलेक्ट करेंगे और उन्हें बिठाएंगे कि ये लेटर है ये जरा देखें ये झूठ है या सच है, और साथ उन्हें पहले ही बता रहे हैं कि और यकीनन झूठ है. आपने अगर खुद फैसला दे दिया, अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली और उसे आपने झूठ करार दे दिया, तो फिर तहकीकाती कमीशन का काम पीछे क्या रह गया? ये पूरे पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने का एक और उनका जो है वो सिलसिला है. ये सारी बातें लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं. पाकिस्तान का बंदा, अब लोग आम पब्लिक वाशूर हो चुकी है. और आप पाकिस्तान में अभी तक आपने जितने पाकिस्तान में लोगों के रिमार्क्स देखे हैं, लोगों के रिएक्शंस देखे हैं, फॉर एग्जांपल फरक सोहेल गोइंदी, उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा लेफ्टिस्ट और एक नजरिए वाला बंदा था. और वो उसने कहा जी कि मैंने जिंदगी में पहली दफा मुझे फील हुआ है कि हम जिंदा कौम है, जिस तरह हमारे लोग सड़कों पर निकले हैं. सरवर बारी जो फाफन का एक्स चेयरमैन था, प्रेसिडेंट था, वो अब फाफन का हेड नहीं है लेकिन एक दानश्वर आदमी है, उसने कहा कि मैंने जो कुछ कल देखा पाकिस्तान की सड़कों पे, मैं समझता हूं कि हमारी कौम अब उठ गई है, जिंदा हो गई है, और इसमें जो ये इन्होंने कहा कि वी आर बेगर्स हैव नो चॉइस या बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ये बात पाकिस्तानी कौम के दिल दिमाग में पेवस्त हो गई है और आज पाकिस्तानी कौम बाहर निकल आई है। और लिटरली जितने लोग बाहर निकले हैं, लोग आटे को भूले हुए थे, पेट्रोल को भूले हुए थे, हर चीज को लोग भूल गए थे, लोगों ने सिर्फ एक पॉइंट पे लोग बाहर निकले हैं। और ये अभी दो दिन बाद जो पेशावर में होगा, और कराची स्पेशली, कराची एक डेड सिटी था, वहां अल्ताफ हुसैन के बाद किसी बंदे ने लोगों को बाहर नहीं निकाला, और अल्ताफ हुसैन किस तरह निकाल रहे थे, वो तो एक धौंस थी, लोगों के शनाख्ती कार्ड ले लिए जाते थे, टीटी वाले फिर रहे होते थे, वो बंदे गिनते थे, काउंट करते थे, वहां पहुंचते थे, आपकी गिनती होती थी, फिर आपको शनाख्ती कार्ड वापस मिलता था, वो जिस तरह लोग इकट्ठे करते थे। कराची पहली दफा कराची ने सांस लिया है, उसे फील हुआ है कि हाँ हम हमारे भी अंदर भी जिंदगी है। आप देखिएगा ये दो दिन बाद इमरान खान ने क्यों पहला जलसा पेशावर में रखा है, क्योंकि पेशावर उसका गढ़ है, और आज वहां पेशावर में एक और डेवलपमेंट हुई है, इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूव की हुई थी वहां चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, महमूद खान के खिलाफ,
गवर्नर ने
इन्होंने इन्होंने जब फील किया, इन्होंने जब फील किया कि हमारे नंबर्स पूरे नहीं है, तो इन्होंने खुद ही वापस ले ली, पीपल्स पार्टी वालों ने और इन्होंने मुस्लिम लीग नून वालों ने वो वापस ली। अगला काम क्या किया पीटीआई वालों ने, उन्होंने फौरी तौर पर अपनी तरफ से कॉन्फिडेंस मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस मूव कर दी, और वहां खड़े खड़े असेंबली में उन्होंने ऑलमोस्ट 80 or 88 वोट्स के साथ कॉन्फिडेंस ले लिया, सिर्फ अपोजिशन में 2 या 3 वोट आए। अब अगले 6 महीने के लिए महमूद खान के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, उसके खिलाफ कोई नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं हो सकती। अब इमरान खान की अपनी मर्जी है, अगर वो चलाना चाहे केपीके की असेंबली को चला सकता है,
लेकिन वो गवर्नर ने वहां पर पीटीआई के गवर्नर जो थे उन्होंने रिजाइन कर दिया है ना, तो ये अब क्या होएगा वहां,
उन्होंने उनका गलत स्टेप था ना, जो जज्बाती आदमी है फरमान शाह जो है, उनकी ये जज्बातियत थी, अगर वो बैठे रहते और आज असेंबली वो तोड़ना चाहते तो वो उनको भेजते, अपना एडवाइस भेजते, तो जो भी होता, लेकिन वहां इस वक्त महमूद खान की इन्होंने मूव वहां चाल खत्म कर दी है, क्योंकि खबरें थी कि 10 20 30 40 45 तक लोग कह रहे थे कि एमपीए इन्होंने जरदारी वगैरह तोड़ ली है, तो अब जब वो 6 महीने के लिए सिक्योर हो गया, अब तो कोई नहीं टूटेगा। नवाज शरीफ ने पहला जलसा अपना पेशावर इसीलिए रखा है कि वो अपनी वहां धाक बिठाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं। अगला जलसा उन्होंने पेशावर कराची में रखा है 17th को, इसलिए कि वो वहां समझ रहे हैं कि वहां दूसरा बड़ा हमारा जलसा होगा, और तीसरा उन्होंने मीनारे पाकिस्तान लाहौर में रखा है। ये 3 जलसे हो जाने के बाद, और मैं आपको बताऊं कि कल से अब याज अमीर को क्या लगे, याज अमीर तो मुस्लिम लीग नून का एमएनए रहा है, याज अमीर एक जर्नलिस्ट है, लेकिन कल से आप याज अमीर के ट्वीट उठा के देख लें, वो बंदा कह रहा है कि मुझे फील हो रहा है कि शायद भुट्टो के बाद हमें कोई पहली दफा कोई लीडर मिला है और हमारी कौम में जो है एक सांस लेने को हौसला पैदा हुआ है और अब हमारी कौम बाहर निकल आई है।
जी, मैंने आप कुछ हमारे साथ कुछ हैं, हमारे साथ कुछ हैं,
एक कॉलर लेते
कॉलर हैं, तो
1x1 416-620-1778 हमारा फोन नंबर है, आप लोग कॉल कर सकते हैं एंड छोटा सवाल कीजिएगा। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, नेक्स्ट कॉल। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
मेरा नाम शाहिद बकीर है। छोटा सा क्वेश्चन ये है कि ये अभी मगेलोए है, एक एमपी था, एक्स एमपी यूके का, उसका मैं सुन रहा था तस्करा, उसने करी ये सब कुछ जो अमेरिका ने किया है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के थ्रू चाइना को घेरने के लिए। आपसे क्वेश्चन ये है कि चाइना का रिएक्शन क्या होगा इस मामले में, क्योंकि अमेरिका जो इमरान खान था वो तो बड़ा उनका स्ट्रांग लाइक, उन्हीं के कहने पे वो इमरान खान गया था शीपेन के कहने पे, तो क्या वो चाइना जो है अपनी इंसर्टनी फील करेगा कि जो आर्मी ने किया है उनके साथ, जबकि आर्मी सारी इक्विपमेंट जो है चाइना से लेती है। बस यही सवाल था।
आर्मी ने तो कुछ नहीं किया, खैर आपकी बात
अच्छा, ये बात इनकी जो है क्वेश्चन इनका मैं समझ गया हूँ, ये जो कह रहे हैं वो अपने तौर पर ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस तरह के जो मामलात होते हैं स्टेट टू स्टेट, ऑफिशियली शायद वो इसको वेलकम करेंगे, इसको मुबारकबाद देंगे और कहेंगे कि हम पाकिस्तान और चाइना पुराने दोस्त हैं और हम इसी तरह करेंगे, लेकिन अनऑफिशियली वो इमरान खान से भी हाथ नहीं पीछे खींचेंगे, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की पब्लिक इमरान खान के साथ है और पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। अगर ये जो मुलजम है जिसने कल कोर्ट में पेश होना था, उसी दिन जिस दिन उसने वहां 4 अरब वाला केस था या 16 अरब वाला था, कोई भी था, मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, उसमें उस बंदे ने बतौर मुलजम पेश होना था और उस पर फर्दे जुर्म आयद होनी थी, वो बंदा प्राइम मिनिस्टर उसमें जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन रहा है, तो ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी हमारी जो है, जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कोई पता नहीं होता किस वक्त क्या कर दे, तो ये हमारी पॉलिटिकल अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी दुनिया पे वाजे हो गई है। अब पूरी दुनिया सामने सामने उधर भी सलाम अलैकुम करेंगे और पीछे पीछे इधर भी सलाम अलैकुम करेंगे, तो इसलिए ये कोई इश्यू नहीं है कि अगर वो ऑफिशियली कोई किसी को मुबारकबाद दे देता है या उसकी फेवर में कोई चार फिक्रे लिख देता है, तो अब दुनिया इतनी सियानी हो गई है और स्पेशली इस्लामाबाद में बैठे हुए जो उनके वहाँ सफारती अमला होता है वो एक एक लम्हे की रिपोर्ट दे रहे होते हैं, तो दे नो व्हाट्स हैपनिंग।
जी एक और कॉल है। जी
जी अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं?
जी रिजवाना सलमान।
जी रिजवाना जी।
जी मैं ये कह कि ये जो अदालतें खुलती हैं वो जो मॉडल टाउन का जब हुआ था तो उसमें जब नहीं खुली अदालतें और वो एक बच्ची का देखा था उसको कैसे बिलक बिलक के रो रही थी अपने कि मेरे माँ बाप को क्यों मारा क्यों मारने को, तो वो सब इन जजेस को क्यों ना समझा था।
जी बहुत अच्छा।
मतलब ये सब क्या हो रहा है हमारे यहाँ, बहुत ही दिल दुख रहा है ना। ये इतना अच्छा जो करप्शन है नाम सर उसको इतना सब के ऐसा निकाला है उसके हाथ पांव बांध के निकालता है, तो ये सब कब तक चलेगा? हम लोगों के ऊपर ये मसला क्यों किए गए हैं समझ में नहीं आ रहा।
चले ठीक है,
शुक्रिया रिशाद जी, बहुत शुक्रिया।
जी जी ये बिल्कुल जिस खातून ने अभी कॉल की है इनका, इनके इस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको एक और इंकशाफ कर दूं कि हमारे पाकिस्तान का निराला सिलसिला है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो शहबाज शरीफ साहब हैं, सारी दुनिया को पता है कि उनपे क्या क्या इल्जाम हैं, हमजा का भी पता है जो वजीर आला पंजाब बनने जा रहे हैं, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होगा कि उन्होंने सबसे पहले जो काम किया है उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया है और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो डॉक्टर तौकीर शाह है। इज बैचमेट ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई का बैचमेट है सिविल सर्विस अकेडमी से, 19th कॉमन का ऑफिसर है डीएमजी ग्रुप का। डॉक्टर तौकीर शाह साहब प्राइवेट सेक्रेटरी पर्सनल सेक्रेटरी थे उस वक्त जब वजीर आला पंजाब थे शहबाज शरीफ साहब और मॉडल टाउन का सानिया हुआ था और उस FIR में शहबाज शरीफ साहब के बाद दूसरा नाम डॉक्टर तौकीर शाह का है। और इन्होंने जब वहां तारुल कादरी साहब ने बहुत जबरदस्त किस्म के मुजाहरे किए थे लाहौर में तो इन्होंने फौरी तौर पर डॉक्टर तौकीर शाह को पाकिस्तान से निकाल दिया था और उसे WTO में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे भेज दिया था। और वहां जाते ही उन्होंने गाड़ी जो ऑफिशियल गाड़ी में बैठे और उस गाड़ी पे क्योंकि वो आपको डिप्लोमेटिक स्टेटस होता है आपका और गाड़ी पे आगे फ्लैग लगा होता है पाकिस्तान का, तो वहां से डॉक्टर तौकीर शाह ने अपने किसी बंदे को कहा कि मैं गाड़ी में बैठने लगा हूं ये जरा पाकिस्तान फ्लैग वाली गाड़ी की तस्वीर बना के पाकिस्तान भेज दो। तो उस बंदे को जो मॉडल टाउन में मुल्जम था जिसने फोन कॉल सुनी थी इसकी, सारे जो वहां प्रूफ थे वो ये थे कि चीफ मिनिस्टर पंजाब को जब ये बताया गया कि यहां इस तरह आमने सामने आ गई हैं फोर्सेज और डॉक्टर तहरुल कादरी के बंदे तो गोली चलाई जाए ना चलाई जाए या अगर गोली चल गई है तो उसने गोली रोकने के ऑर्डर दिए थे या नहीं दिए थे, वो फोन कॉल्स क्योंकि जरा प्राइवेट सेक्रेटरी और पर्सनल सेक्रेटरी ने सुनी थी और उसी ने आगे पुलिस फोर्स को कॉल करके ऑर्डर दिया था कि चीफ मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि गोली रोक दो या और चलाओ, वो जो मैसेजेस थे वो डॉक्टर तौकीर शाह साहब के थे। अगर इन्होंने रुकवाई थी तो वो प्रूफ है, अगर इन्होंने मजीद गोली चलवाई थी तो ये मुल्जिम है, लेकिन उस वक्त इन्हें भगा दिया गया था सिर्फ इसलिए कि अगर इन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ा तो ये सरकारी अफसर है ब्यूरोक्रेट है तो कहीं वहां जरा इसे प्रेशर डाला गया तो कहीं ये कुछ सच ना उगल दे या इससे कुछ बयान ना ले ले गवर्नमेंट, तो इसे भगा दिया गया था। अब डॉक्टर तौकीर शाह साहब को पहला ऑर्डर उन्होंने ये लगाया कि डॉक्टर तौकीर शाह इज गोइंग टू बी माय प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अब डॉक्टर तौकीर शाह साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और इस हद तक इनके खानदान के अंदर भी मसला है। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ फवाद हसन फवाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, डॉक्टर तौकीर शाह पंजाब में इनके साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने फवाद हसन फवाद को नहीं लगाया हालांकि फवाद हसन फवाद का ज्यादा एक्सपीरियंस है टू बी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसको नहीं लगाया, अपने बंदे को लगाया है। इस रिफ्ट की एक और झलक आपने कौमी असेंबली में देखी होगी कि मरियम नवाज वहां मेहमानों की गैलरी में बैठी हुई थी और उन्होंने आगे इतनी बड़ी तस्वीर नवाज शरीफ की फ्रेम आगे उठा के रखी हुई थी कि जिस तरह कहीं लोग जाते हैं वो अपने बाप की तस्वीर साथ लगा के जाते हैं कि मैं इसकी बेटी हूं और मुझे इसके नाम पे जो है जो भी सियासी आपने मुझे मेरी फेवर देनी है जो खैरात सियासी खैरात देनी है इस बंदे की वजह से दें। मरियम नवाज शरीफ ने वो तस्वीर वहां ले जाके एक अजीब सा तासुर पैदा किया और फिर जब वहां नारे लग गए वजीर आजम नवाज शरीफ तो ये तासुर पैदा करने की कोशिश की उन्होंने कि असल ताकत नवाज शरीफ की है, असल हमारी पार्टी का हेड वो है और हमारी पार्टी में हुक्म उसी का चलता है, आज आप प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं ठीक है बन जाएं लेकिन आगे वही होगा जो ये बंदा चाहेगा जिसकी तस्वीर मैंने उठाई हुई है। ये वो तासर अपने MNAs को और बाकी अपने लोगों को देना चाहते थे और शहबाज शरीफ के ग्रुप को ये देना चाहते थे, इनकी बाकायदा अंदर दो ग्रुप है मुस्लिम लीग नून के, लेकिन देखें आगे चल के क्या होता है।
एक और कॉल है। जी
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम, मैं तनवीर बात कर रहा हूँ, मुझे दो छोटे सवाल पूछने हैं।
जी फरमाइए।
एक ये पूछते हैं कि बाइडेन ने आज मोदी से मुलाकात की है यानी कि वर्चुअल मीटिंग करी है, राइट आफ्टर जो पाकिस्तान में हुआ, तो इसके कुछ मायने बनते हैं?
नहीं नहीं, ये पाकिस्तान के साथ कुछ लेना देना नहीं है, ये क्वाड की और वो 2+2 की जो मीटिंग्स होने वाली है उनका, उसके सिलसिले की है।
अच्छा, दूसरा सवाल भी कर दें।
दूसरा ये था कि वो लिफाफा जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को मिला है वो कितना भारी था, जरा बताएंगे?
उस लिफाफे का भारी इसलिए था कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो पढ़ते नहीं हैं। मैं अभी निकाल के मैंने देखी है अभी कि नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग हुई थी जिसमें इमरान खान ने वो लेटर पेश किया था, वो पहली ऑफिशियल मीटिंग थी जिसमें ऑफिशियली लेटर डिस्क्लोज किया गया था। उससे पहले तो फॉरन ऑफिस में आया, फॉरन ऑफिस से फॉरन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी को मिला, शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को दिखाया तो इमरान खान ने जलसे में लहरा दिया। लोगों ने कहा आप जलसे में लहरा रहे हो, आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाओ। उसने अगले दिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला ली, वो शायद 30th को थी या 31st को थी, शायद 30th को थी, इस्लामाबाद में। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में कौन होता है? उसे चेयर प्राइम मिनिस्टर करता है। और उसमें आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो चेयर इस तरह करते थे कि चेयर करने वाली सीट पे दो सीटें मेन बैठ पड़ी होती थी, एक पे आर्मी चीफ बैठता था, एक पे नवाज शरीफ बैठता था। मतलब मियां साहब की इतनी वो नहीं थी कि उसे कहते कि भाई साइड पे बैठो, मैं चेयर कर रहा हूँ। दो बंदे चेयर करते थे, हेड करते थे मीटिंग को। अभी जो मैं तस्वीर देख रहा हूँ डॉन पे जो छपी है, जो एंटी इमरान खान न्यूज़पेपर है, उस पे जो तस्वीर छपी है, इमरान खान उसे चेयर कर रहे हैं, साइड पे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बैठे हैं, उससे आगे आर्मी चीफ बैठे हुए हैं और फिर नेवल के हेड और फिर एयरफोर्स के हेड। दूसरी तरफ परवेज खटक वजीर दफा बैठे हैं, साथ रेवेन्यू के मिनिस्टर हैं हमाद अजहर, उससे आगे वजीर खजाना शौकत तरीन बैठे हैं और उससे आगे ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर श्री मजारी बैठी हैं। और सामने टेलीविजन स्क्रीन पर वो लेटर उन्हें दिखाया जा रहा है, उस पे क्या कहते हैं
मॉनिटर
पे दिखाया जा रहा है। वो लेटर देखने के बाद जो ऑफिशियली वहां से स्टेटमेंट जो एलामिया जारी किया गया उस मीटिंग के बाद, आर्मी जिस मीटिंग में जाती है वो जब तक वेट ना कर लें उसकी ऑफिशियल प्रेस रिलीज हैंड आउट को, मोस्ट ऑफ द टाइम वो खुद कहते हैं हम लिख के आपको भेज देंगे पीएम हाउस में। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि जब प्राइम मिनिस्टर की, मैंने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को भी कवर किया है एज ए बीट रिपोर्टर जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी 3 साल कवर किया है जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थी, मैंने मलक मिराज खालिद साहब को भी कवर किया है जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने मुईन कुरैशी साहब को भी कवर किया है एज ए प्राइम मिनिस्टर बीट रिपोर्टर। तो मैं इतने प्राइम मिनिस्टर्स को कवर करने के बाद मुझे अंदाजा है कि क्या होता है प्राइम मिनिस्टर हाउस में। मीटिंग खत्म होती है, हमें फौरी तौर पर बता दिया जाता है कि अभी हम हैंड आउट थोड़ी देर में भेज रहे हैं, ये पॉइंट्स हैं। जब वो पॉइंट्स हमें फोन पे बता देते हैं हम उसकी एक इब्तदाई खबर बना के चला देते हैं टेलीविजन अखबार या रेडियो जहां भी देनी है, थोड़ी देर में ऑफिशियल हैंड आउट भी आ जाता है और फिर हम उस हैंड आउट को कंसल्ट करके और जो उन्होंने पॉइंट्स पहले बताए होते हैं और फिर उस मीटिंग में शरीक शुरका में से हम ढूंढते हैं एक दो बंदे से किसी से बात हो जाए, फिर हम अपनी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाते हैं। लेकिन अगर किसी प्राइम मिनिस्टर हाउस में होने वाली मीटिंग में एक भी मुसल्ला अफवाज का बंदा, आर्मी एयरफोर्स या नेवी का बंदा बैठा होता है तो हम कहते हैं अब तो ये गई, अब तो ये आराम से ही हमारे पास प्रेस रिलीज आएगी, हैंड आउट आएगा, ये तो अब घंटा दो घंटे लगेगा। क्यों? कि वो वहां से वेट होके आती है ऑफिशियली, दे डोंट अलाउ यू कि आप रिलीज करें एक सिंगल वर्ड भी उस मीटिंग के बारे में जिसमें वो बैठे हुए थे। और ये तो इंतहाई सेंसिटिव मीटिंग थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग जिसमें वो लेटर डिस्कस होना था जिसकी बेस पे हमारा फ्यूचर जो है उसका फैसला हो रहा था। क्या वो ऑफिशियल जो रिलीज किया गया था मैटर वो उनकी अप्रूवल के बाद नहीं होगा? वो जब रिलीज हो गया और दो चार दिन बाद लोगों ने एतराज किया तो फिर DGISPR मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर ने ऑफिशियली कहा कि हमने जो कुछ कहना था उस लेटर के बारे में हमने उस एलामिया में कह दिया है, वो एलामिया जो है वो हमारा है और वही फाइनल है। अब उस एलामिया की तरफ आए, उस एलामिया में वो क्या कहते हैं? हमारे लोग जबानी बात करते हैं लेटर की, आप लेटर के डिटेल में जाएंगे लेटर में है क्या? और जो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अगर रत्ती बराबर भी हुआ इसमें तो मैं रिजाइन कर जाऊंगा, अब रत्ती मैं उन्हें पढ़ के सुनाता हूं और पाकिस्तान में और भी लोग उन्हें पढ़ के सुनाएंगे कि रत्ती इसमें है कौन सी। उन्होंने कहा कि द नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग कमेटी डिसाइडेड ऑन थर्सडे टू इश्यू अ स्ट्रांग डिमार्च टू अ कंट्री दैट इट डिड नॉट नेम ओवर अ थ्रेट लेटर purportedly showing evidence of a foreign conspiracy to oust the PTI-led government, terming it blatant interference in the internal affairs of Pakistan. अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? आगे लंबी चौड़ी है डिटेल, लेकिन ये जो रत्ती बराबर कहते हैं, अगर वहां आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयरफोर्स के चीफ बैठे हुए थे उसके बाद ये रिलीज हो रहा है, इट टर्म द इंटरफेरेंस अनएक्सेप्टेबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। The state, the committee expressed grave concern at the communication, terming the language used by the foreign officials as undiplomatic. The statement said, adding that the meeting concluded that it amounted to blatant interference in the internal affairs of Pakistan by the country in question. The committee decided that Pakistan will issue a strong demarche to the country in question, both in Islamabad and in the country's capital, through proper channel in keeping with diplomatic norms, according to the statement. और भी है लेकिन इतनी काफी है मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को बताने के लिए. अब शहबाज शरीफ साहब को जब कहा वहां नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी में बुलाया गया था एज ए अपोजिशन लीडर, वो नहीं गए. उसके बाद जब इन्होंने कैबिनेट से अप्रूव करा के स्पीकर को दे दिया और उसे कहा कि वहां जाके दिखा दो जिस चीज पार्लियामानी लीडर ने देखना है, जब स्पीकर असेंबली ने अपोजिशन लीडर को कहा कि आके देख लें मेरे चैंबर में, वहां जाके इन्होंने नहीं देखा. और आज स्पीच में कह रहे थे कि मैंने अभी तक वो कसमें उठा रहे थे कि मैंने अभी तक वो लेटर नहीं देखा. अब एक कॉमन सेंस की बात है, आप और मैं, माजिद जमाल भाई, मैं आपसे पूछता हूं, शाजिया बहन से पूछता हूं, हमारे बारे में अगर कहीं किसी जगह आपको शक होगा कि आप पे कोई इल्जाम लग गया है तो आप क्या करेंगे? आप फौरी तौर पर पता कराएंगे ना कि मेरे ऊपर क्या इल्जाम लगा है. आपको कोई बताएगा फलां पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ रिपोर्ट आ गई है, आप फौरन कहेंगे यार वो रिपोर्ट निकलवाओ मैं पढ़ूं सही क्या इल्जाम मुझ पे क्या लगा है. आप फौरी तौर पर इस फिक्र में होंगे, अगर आप क्लीन हैं, अगर आप इन्वॉल्व नहीं है, अगर आपको इन दूसरी साइड की स्टोरी नहीं पता और आप पे सब कुछ ही अचानक गिरा है, तो आप कहेंगे यार जल्दी करो वो पेपर निकालो देखें तो सही असल में है क्या, और फिर आप अपने लायर के सामने रखेंगे यार ये देखो इस पे मुझ पे ये इल्जाम लगा है कि मैं इस चीज में, इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हूं, अब बताओ इससे मैंने निकलना कैसे है. और मैं तो नहीं हूं, मैं तो इन डेट्स में, इन चीजों में, यहां यहां फलां फलां जगह था, फलां फलां लोगों से मिल रहा था, मुझे क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है. आप करेंगे ना कुछ अपने आप को क्लियर करने के लिए? वो आज प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इतने दिन गुजर गए हैं, 27 मार्च से लेकर आज 11 अप्रैल तक, वो कहते हैं मैंने अभी तक लेटर नहीं देखा. इसका मतलब है यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू सी दैट. आपको पता है आपको पाकिस्तान के बोसीदा निजाम पे यकीन है, ये बोसीदा निजाम आपको निकाल के ले जाएगा क्लीन.
नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी. जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो
हेलो
हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
हेलो, वालेकुम अस्सलाम
जी.
ये माजिद भाई, मेरा तो इनसे ये सवाल है कि ये जो चोरों का टोला हुकूमत करने आ गया है, नंबर एक तो ये कि क्या ये इनकी जो सांझ की हांडी है चुराहे में टूटेगी, नंबर दो ये है कि क्या पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक की तरह एक मुल्क बन जाएगा.
अच्छी बात,
मुझे तो ये लग रहा है कि
बहुत शुक्रिया बाजी, बहुत शुक्रिया,
सारा वकार खत्म कर दिया है. थैंक यू जी,
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा अपने कॉलर्स से कि लैंग्वेज को जरा देख के, ओके, थोड़ा सा लैंग्वेज पे जरा कंट्रोल करके बात करें जी.
हाँ जी, क्वेश्चन इनका ठीक है, क्वेश्चन इनका ठीक है. ये फीलिंग्स जो हैं ये हर बंदे की हैं. लोग सोचते हैं कि क्या ये वाकई बनाना रिपब्लिक है. बनाना रिपब्लिक एक ऐसा वर्ड है माजिद भाई कि ये पूरी दुनिया में मुस्तमल है, हर बंदा इसे इस्तेमाल करता है. परवेज मुशरफ साहब ने बहुत अरसा पहले यूज किया था कि वो यार नॉट बनाना रिपब्लिक, उन्होंने भी कौमी गैरत का हमें एहसास दिलाया था. पता नहीं बाद में उनकी गैरत किधर चली गई, लेकिन उन्होंने कहा था. अब इनकी ये जो बीच चुराहे में हांडी वाली बात ये कह रही थी, ये बिल्कुल ठीक बात है, उसका कुछ लोगों ने झलक अभी देख ली. अभी मिनिस्ट्रियां इनकी डिवाइड होनी है, तकसीम होनी है. फॉर एग्जाम्पल, वजीर खारजा बिलावल साहब बनना चाहते होंगे, क्योंकि एक पाकिस्तान में मिथ है कि जिस बंदे ने प्राइम मिनिस्टर बनना हो वो पहले वजीर खारजा बनता है और फिर वो वाशिंगटन से और लंदन से और बाकी सारी दुनिया से अपने टाइज बनाता है और ग्रूमिंग उसकी होती है फॉरन ऑफिस में, और उसके बाद वो बंदा प्राइम मिनिस्टर बनता है. तो वजीर खारजा तो वो बिलावल को बनवाना चाहेंगे, वो पीपल्स पार्टी के हिस्से में चली गई. अब खजाना और दाखिला जो है, दाखिला क्योंकि राणा सनाउल्ला को वो बहुत बड़ा वो गैंगस्टर समझते हैं और जरदारी साहब ने उसे पहले ही कह दिया है हेलो इंटीरियर मिनिस्टर, हाउ आर यू, तो उन्होंने, जरदारी साहब ने डिक्लेयर कर दिया है इंटीरियर मिनिस्टर, क्योंकि जरदारी साहब चाहते हैं कि राणा सनाउल्ला जैसा सख्त इंटीरियर मिनिस्टर हो और वो फिर पीटीआई के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां करे और फिर पीटीआई को भी नुकसान हो और मुस्लिम लीग नून को भी नुकसान हो. ये नुकसान जरदारी साहब करवाना चाहते हैं नून से, क्योंकि उन्हें पता है कि नुकसान उनका होगा, मेरा क्या होगा. तो इसलिए वो उन्हें हलाशेरी दे रहे हैं कि राणा सनाउल्ला को वजीर दाखिला लगाएं, क्योंकि उन्हें वजीर दाखिला राणा सनाउल्ला की तबीयत का पता है कि ये क्या करेगा. उसके बाद पीछे बच जाती है खजाना. खजाना इसहाक डार साहब, उनके घर की है, क्योंकि पैसों का, चीजों का सारी जोड़ तोड़, डॉलर कैसे कंट्रोल करना है, स्टेट बैंक को किस तरह कंट्रोल करना है, बाकी बैंकों को किस तरह करना है, फिगर्स की किस तरह फजिंग करनी है, ये सारे वो माहिर हैं. और अभी से वो बजट लंदन में बैठ के बना रहे हैं, इससे पहले पता नहीं वो पाकिस्तान जाने से क्यों डरते थे, अब जा रहे हैं. तो वो वजीर खजाना तो वो हो गए. पीछे इंपॉर्टेंट एक मिनिस्ट्री बचती है वजीर दफा की, चार इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रियों में से. अब मौलाना फजल रहमान साहब कहेंगे कि मेरे लिए क्या है, मेरे बेटे के लिए, मेरा बेटा भी वहां, मौलाना असद महमूद जो है वो रोजाना जो है दाढ़ी को चमका के असेंबली में जाता है और वो हमारी 14-15 MNA है हमारे. तो वजीर दफा मेरे ख्याल में तो मौलाना असद महमूद को बना देना चाहिए और फिर GHQ में जब वो जाएंगे मीटिंग्स करने या उनके पास आएंगे مسلح ہماری افواج کے سربراہان, تو یقیناً ان کی اچھی گپ شپ رہے گی مولانا اسد محمود اور جو بھی ہمارے آرمی چیف کے نیول یا اس کے ایئر فورس کے چیف ہوں گے, تو وہ مولانا اسد محمود صاحب شاید وزیر دفاع بن جائیں. پھر اس کے بعد نیچے ایک لمبی لسٹ ہے, کیوں کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس مسلم لیگ نون کے پاس پوری ایک کیبنٹ موجود ہے, خواجہ آصف صاحب ہیں, خواجہ سعد رفیق ہیں, رانا تنویر ہیں, خرم دستگیر ہیں, شاہد خاقان عباسی ہیں, آپ ان کتنوں کو اگنور کریں گے؟ اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کے پاس ہنا ربانی کھڑا ہے, شازیہ مری ہے, نفیسہ شاہ ہے, اور ان کے اپنے ایم این ایز ہیں, ان کے پاس بھی پوری ایکسپیرینس ٹیم ہے. اب مولانا فضل صاحب کہتے ہیں جی میں نے اتنا پی ڈی ایم کا, میں پریزیڈنٹ تھا, مجھے آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی بھی جھنڈی دکھا رہے ہیں, آپ مجھے نہیں بنا رہے, زرداری صاحب امیدوار بن گئے ہیں تو منسٹریاں بھی مجھے اتنی ملنی چاہیے. ایم کیو ایم والے کہتے ہیں دو منسٹریاں تو انہوں نے ہمیں دی ہوئی تھیں, تیسری کی آفر کر رہے تھے, آپ ہمیں تین تو دیں کم از کم. ان کو سات بندے ہیں, وہ تین منسٹریاں مانگتے ہیں, سات گورنری مانگتے ہیں, کراچی کی ایڈمنسٹریٹری مانگتے ہیں, حیدرآباد کی ایڈمنسٹریٹری مانگتے ہیں, حتیٰ کہ میرپور خاص کی وہ ایڈمنسٹریٹری مانگ رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر ہمارا ہونا چاہیے میرپور خاص میں, لڑکانہ کو شاید انہوں نے بخش دیا ہے, ان کی وہاں لڑائی ہونی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں اختر مینگل صاحب, بہت ہیوی ویٹ ہیں بلوچستان سے اور ان کی سپورٹ بڑی سپورٹ ہے, چار ایم پی ایم این اے ہیں ان کے, ان کو کیا دیں گے آپ؟ انہیں اگر وزیر دفاع بنائیں گے تو پھر وہ مسنگ پرسنز کے ایشو اور وہ فائلیں اور وہ چیزیں وہ کس طرح آئی ایس آئی ایم آئی اور ہمارے فورسز اختر مینگل صاحب کے ساتھ ہینڈل کریں گے, کون سی فائل دکھانی ہے, کون سی چھپانی ہے, وہ ایک عجیب ڈیفینس منسٹری میں وہ مسئلہ بنا ہوا ہوگا. پھر اپنے اویس نورانی صاحب اور آفتاب شرپاؤ صاحب کے بندے گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ وہ بھی پی ڈی ایم کے وہ ہیں, اتحادی ہیں, حکومت میں تو نہیں ہے, لیکن اویس نورانی صاحب کہیں گے کہ میرا تو کوئی چانس نہیں ہے, نہ میں پہلے ایم این اے بنا, نہ آئندہ کوئی چانس ہے, مجھے کم از کم آپ معاون خصوصی ایکول ٹو فیڈرل منسٹر کیبنٹ میں مجھے دیکھنے تو دیں, اندر سے پی ایم ہاؤس ہوتا کیسا ہے اور حکومت کس طرح چلتی ہے. انس نورانی صاحب کیونکہ کراچی میں جے یو پی کے لوگ ہیں, فالوور ہیں ان کی, ایک ہے فالوئنگ ہے, تو وہ انس نورانی صاحب کہیں گے مجھے دیں. اب وہ کس کس کو راضی کریں گے؟ پھر ایک اور دلچسپ بات, علی وزیر صاحب اور محسن داوڑ صاحب جو جن کی جو تحفظ, وہ پشتون تحفظ موومنٹ تھی اور اس کا کتنا مسئلہ رہا پاکستان آرمی کے ساتھ اور ہماری فورسز کے ساتھ اور ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ, ان کے ساتھ کیا ہوں گے اگر وہ محسن داوڑ یا علی وزیر کہیں جی کہ میں نے وزیر دفاع بننا ہے, تو کیا کریں گے؟ نہیں تو دو ووٹ کم ہو جائیں گے, تین ووٹوں پہ حکومت قائم ہے. تو یہ ان کے پاس ایک لمبا مسئلہ ہے. یہ جو خاتون کال کر رہی تھیں کہ یہ دال بٹے گی, یہ دال بٹنے کے دن جو ہیں کچھ زیادہ دور نہیں ہے. پھر ایک اور ہیں اے این پی والے حیدر ہوتی صاحب, وہ بھی ایم این اے ہیں, ان کو کیا دیں گے آپ؟ تو خالد مقصی صاحب ہیں بلوچستان عوامی پارٹی والے, ان کو کیا دیں گے؟ پھر ان کا ایک اور ساجد میر صاحب ہیں, اسمبلی میں نہیں ہے لیکن وہ ان کے اتحادی ہیں میاں صاحب کے, وہ ان کو کیا دیں گے؟ اب ان بارہ ستاروں کو آپ پہلے پورے کر لیں, اس کے بعد آپ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں کے پاس اسمبلی کے اندر پوری ایک ایک کیبنٹ جتنی اسٹرینتھ موجود ہے, تو یہ تو مسئلہ ہونا ہے آنے والے دنوں میں. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ جی اسٹیٹ بینک کو انہوں نے بیچ دیا عمران خان نے, اب اگر یہ اسٹیٹ بینک کو واپس لیں, آئی ایم ایف سے کہیں جی کہ وہ جو ہم نے کیا تھا ہم ریورس کرتے ہیں, اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کو کریں ریورس, نہیں کر سکیں گے, ریورس کریں گے تو آئی ایم ایف جو ہے وہ ناطقہ بند کر دے گا.
لیکن آج پیسے بڑے آ گئے ہیں جی ملک میں, وہ جو ہے ہمارا انڈیکس بڑا اوپر چلا گیا ہے, تو یہ اچانک پیسے کدھر سے آئے ہیں؟
وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو لوگ ہیں, دو چار چھ لوگ نہیں ہیں, ہزاروں لاکھوں لوگ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہر وقت اسٹاک کھیل رہے ہوتے ہیں, اٹس اے بزنس, ٹھیک ہے؟ اسٹاک مارکیٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اسلام آباد میں حکومت نون کی ہے, پیپلز پارٹی کی ہے, پی ٹی آئی کی ہے, جے یو آئی کی ہے یا کسی اور کی ہے, انہیں اس سے غرض ہے کہ سٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے, یہ حکومت اگلے دو گھنٹے چار گھنٹے چلے گی یا نہیں چلے گی. جو پرسوں رات کو وہاں سچویشن تھی اسلام آباد میں, پی ایم ہاؤس میں عمران خان بیٹھے ہوئے تھے اور اسمبلی ادھر جو ہے لمبی کر رہے تھے, حتیٰ کہ وہ باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے, اندر ہی نمازیں پڑھ رہے تھے اسمبلی ہال کے اندر ہی, نیچے کپڑے بچھا کے ہمارے لوگ, تو وہ جو سچویشن تھی سٹینڈ سٹل والی سچویشن میں, اس میں تو کسی نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی تھی. اب جب ہو گیا کہ یہ پرائم منسٹر الیکٹ ہو گیا ہے اور اب اگلے چھ مہینے یہ رہے گا جیسا بھی رہے گا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی چھ مہینے تو ہیں نا, اب چلیں بزنس سٹارٹ کریں, بزنس کریں. ان کا ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے جو سٹاک مارکیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں, بزنس پہ پیسے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, انہوں نے یہاں سے ہی پیسے کمانے ہیں. تو وہ جو ایک کریکشن آنی تھی, یہ تو ایک ابتدائی انیشیل کریکشن آنی ہی تھی. اب دو چار چھ دن بعد پتا چلے گا جب یہ اسٹیٹ بینک کو ہاتھ لگائیں گے, تو آگے پتا چلے گا کہ اسٹیٹ بینک تو یہ چیزیں ہو چکی ہیں اسٹیٹ بینک کی, اگر آپ ریورس کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے لیٹس ٹاک ٹو دا آئی ایم ایف. جب آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے اچھا آگے ہم سے بات کرنے, تم نے تو پہلے جب وزیر خزانہ تھے تم نے ہمارے ساتھ یہ چیزیں کی تھیں, اب ذرا وہ پچھلا حساب بتاؤ, اور تمہارے اتنے پیسے جو ہے وہ پچھلا عمران خان ہمیں پے بیک کر کے گیا ہے, तुम्हारा तो हमारा क्रेडिट देखना पड़ेगा कि तुम हमारे साथ पहले क्या सलूक करते रहे हो, क्योंकि इमरान खान पे ये इल्जाम लगाते हैं ना कि तुमने इतना लोन लिया है। इमरान खान कहता है बिल्कुल मैंने लिया है, पीटीआई के आने से पहले $18 ट्रिलियन हमारा लोन था और इमरान खान की गवर्नमेंट ने 3 साल में 6 ट्रिलियन लिया, बहुत ज्यादा लिया। लेकिन वो कहता है कि 18 ट्रिलियन पीटीआई ने लिया, टोटल 43 ट्रिलियन है पाकिस्तान पे लोन, इमरान खान ने 18 ट्रिलियन लिया। लेकिन इमरान खान कहता है मैंने 9 ट्रिलियन तो सूद की अदायगी की है, इसका मतलब है मैंने सिर्फ 6 ट्रिलियन लिया है। अब उस 6 ट्रिलियन की वो मजीद जस्टिफिकेशन क्या देता है, वो कहता है 5,000 अरब रुपए के मेरे अपने डोमेस्टिक लोन है और 2,000 के दूसरे इदारों के हैं। 3,000 अरब वो रुपया कहता है मैंने तो कोविड पे खर्च किया है, मेरे पास हिसाब किताब मौजूदा देख लें। फिर वो ये कहता है कि ये सोशल नेट पे जो इनका बेनजीर कार्ड प्रोग्राम था उस पे इन्होंने 120 अरब रुपया ये इन्होंने ये कर रहे थे खर्च, मैंने 120 को मैं 360 पे ले गया हूँ, मैंने गरीबों की ज्यादा हेल्प किया है, मैं ट्रिपल कर दिया मैंने लोगों की हेल्प गरीबों की, जो उससे सोशल नेट में जो बिलो पॉवर्टी है उनको मैंने 120 अरब से 360 अरब पे ले गया हूँ। तो फिगर्स फैक्ट्स हर जगह मौजूद हैं, लेकिन इनके लिए आसान नहीं होगा। जब ये कहते थे जी कि डॉलर पेट्रोल 100 रुपए का लीटर होना चाहिए तो अब करें 100 रुपए का, जब ये कहते थे आटा $35 का होना चाहिए करें। आज शहबाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच में बड़ी हातमताई की कब्र पे लात मारी, उन्होंने कहा जी कि हम आटा 300 रुपया वो कम कर रहे हैं आटे की बोरी की कीमत, और भाई ये तो इमरान खान ने भी 30% की हुई थी, जो आप सब्सिडी कह रहे हो वो कह रहे हैं ना मैं गरीबों को सस्ता आटा दूंगा, सस्ता आटा स्कीम पूरे पाकिस्तान में हम शुरू करेंगे दोबारा जो पंजाब में थी। सस्ता आटा स्कीम वही थी ना जो इमरान खान ने यूटिलिटी स्टोर पे 30% कार्ड दिखा के तो आप ले सकते थे 30%, तो 30% 300 ही बनती है। इन्होंने कहा जी मिनिमम वेज 25,000 में कर रहा हूँ, मिनिमम वेज 25,000 एप्टमा वाले एक साल पहले कर चुके हैं इमरान खान से मुलाकात करके। एप्टमा वो है ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लेबर एप्टमा की है, हमारी मिलों की है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हमारी कॉटन की है और उसकी है टेक्सटाइल की है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो एक साल पहले 25,000 कर चुकी है। आपने क्या कमाल किया, इन्होंने एक और किया, इन्होंने कहा मैं पेंशनर्स की 10% पेंशन बढ़ा रहा हूं, ये बहुत अच्छा काम किया, दिस इज वाकई ये एक नया काम किया शहबाज शरीफ साहब ने। लेकिन ये क्यों किया, उसके पीछे वजह मैं आपको बताता हूं, उसके पीछे वजह यह है कि जो एक्स पाकिस्तान आर्मी इंप्लाइज एसोसिएशन है जिसमें ऑफिसर्स भी हैं और नॉन कमीशन ऑफिसर्स भी हैं, सारे हैं, सिपाही भी है और जनरल भी है, उनकी टोटल तादाद पाकिस्तान में 35 लाख है, 35 लाख उनके मेंबरान हैं और वो पिछले 10 दिन से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ये ज्यादती हो रही है और इमरान खान के साथ वो खुल के आ गए हैं। उन 35 लाख जो एक्स एम्प्लाईज वाले हैं उनको ये कहने के लिए कि शायद मैं उन्हें 10% की पेंशन बढ़ा दूंगा तो वो कौमी गैरत को भूल जाएंगे, और भाई उन्होंने तो सारी जिंदगी पढ़ा है कौमी गैरत का सबक है, उन्होंने तो गोलियां खाई हैं इस कौमी गैरत के पीछे, वो तुम्हारे 10% पेंशन की वजह से तुम्हारी तरफ आ जाएंगे, नो वे, ये मिस फायर है उसका, कर दिया अच्छी बात है, कर दिया अच्छी बात है, लेकिन ये वो बाय नहीं करने लगे। वो इस वक्त कौमी गैरत का जो सौदा इमरान खान ने बेचा है वो खरीद चुके हैं, अब वो तुम्हारी हट्टी पे नहीं आएंगे। पेंशन तुमने बढ़ा दी अच्छी बात है, बढ़ानी चाहिए, महंगाई ज्यादा है, पेंशनर्स का हक बनता है।
ठीक है जी, एक और कॉल है
जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, नेक्स्ट कॉल जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, नेक्स्ट कॉल जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, नेक्स्ट कॉल जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट कॉल जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम
जी। अस्सलाम वालेकुम
जी। कौन बात कर रहे हैं?
हाँ सर, बात कर रहे हैं। मैंने कहा ये मुझे एक सवाल ये करना था कि किसी भी पाकिस्तान में भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, बजाय पार्टी डोमिनेट चैनल करने से बेहतर है कि हमें अपोजिशन और हुकूमत को देखना चाहिए, और हुकूमत से ज्यादा हमें अपोजिशन को और इस चीज को देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। लेकिन मैं देख ही रहा हूँ कि तवातर से एक पार्टी जो कि अब अपोजिशन में चली गई तो उसके लिए वो बगैर सांस लिए जो है वो पूरी डिटेल दी जा रही है, जो कि गलत है। पाकिस्तानी कौम का जो मसला है उसको देखना चाहिए, और जो पाकिस्तानी कौम का मसला था वो यही था कि एक पार्टी जो है उसका आइन तोड़ रही थी और उसका वजीर आजम जो कि उन्हीं का वजीर आजम था, पाकिस्तान का नहीं था, तो उन्होंने 4 साल में इतनी फुल सपोर्ट में कुछ नहीं किया, तो अब वो चाहे अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो उन्हें रोड पे आने का शौक है, तो उनका शौक पूरा हो गया है। लेकिन खुदा रहा पाकिस्तान पे रहम करें, पाकिस्तान के आइन पे रहम करें और पाकिस्तान की आवाम पे रहम करें।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी।
अच्छा ये जो कॉलर है इंतहाई मोहतरम है, इन्होंने जो बात की है बिल्कुल सही की है। उन्हें ठेस पहुंच रही होगी जो सिचुएशन है इस वक्त, और स्पेशली जब वो पाकिस्तान का कोई टेलीविजन चैनल लगाते होंगे या सोशल मीडिया पे जाते होंगे और देखते होंगे कि कराची पूरा सड़कों में निकला है, लाहौर निकला है, फैसलाबाद निकला है, पिंडी निकला है, इस्लामाबाद निकला है, तो उन्हें तकलीफ होती होगी कि ये लोग क्यों निकल आए हैं। क्यों? मेरे जैसे एक आम आदमी को ये बात अच्छी लगती है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो इमरान खान के पीछे निकले हैं, मुझे इससे गर्ज है कि लोगों को अपने राइट्स का एहसास हो गया है। क्योंकि वहां जो बाहर निकले हैं उनके सिर्फ दो क्वेश्चन थे, एक ये थे कि ये मुल्क सिर्फ इशराफिया के लिए है, ये उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने कि ये मुल्क सिर्फ इशराफिया के लिए है, जिसके लिए रात को 12 बजे भी अदालतें खुल जाती हैं। लोग पूछते हैं जी कि मेरे लिए तो नहीं खुली, लोग कहते हैं मेरा, लोग वहां कह रहे थे बाहर चिल्ला चिल्ला के, मेरा केस 8 साल से हाई कोर्ट में है, मेरे लिए तो कभी रात को कोर्ट नहीं खुली, तो ये कोर्ट 11 बजे किन के लिए खुल जाती है? और इससे ज्यादा और क्या हो कि दिन को 12:30 बजे एक बंदा जाता है अपनी पिटीशन लेके, वो कहते हैं नहीं जी कोर्ट का टाइम खत्म हो गया, परसों आइएगा मंडे को, और दूसरे बंदे के लिए आप कोर्ट रात को खोल के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि आए और हम आपको रिलीफ देते हैं। तो ये जो नाइंसाफी हुई है, ये इस नाइंसाफी पे लोग बाहर निकले हैं। अगर मैं भी बात कर रहा हूं तो उस नाइंसाफी पे कर रहा हूं। अगर इन साहब को ये कहते हैं कि बहुत अच्छे काम मैं गिनवा दूं, बिल्कुल नवाज शरीफ साहब ने मोटरवे बनाई, अच्छा काम किया, बहुत अच्छी बात है। नवाज शरीफ साहब 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने, 1 दफा बने, मैंडेट मिला तो बने, दूसरी दफा उन्हें वोट मिले तो बने, तीसरी दफा बने, मैं दुआ करता हूं 4थी दफा बन जाए और ये मेरे भाई साहब बहुत ज्यादा खुश हो जाए। और भाई इससे कोई गर्ज नहीं है, हम शख्सियत परस्ती से हमें निकलना पड़ेगा। ये इमरान खान के नारे लगाने वाले, ये पीपल्स पार्टी के जरदारी के नारे लगाने वाले, और ये नवाज शरीफ के जरदारी के नारे लगाने वाले, ये अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए नारे लगाते हैं। एक कॉमन मैन बन के सोचें। मैं ये बात बता रहा हूं कि पाकिस्तान का कॉमन मैन जाग गया है, बाहर निकल आया है। अगर आपको समझ नहीं आ रही, दोबारा सोशल मीडिया पे जाएं, तस्वीरें देखें जो पाकिस्तान के कल 180 शहरों से लोगों ने अपलोड की हैं। हालांकि पाकिस्तान टेलीविजन, पाकिस्तान में जितने 87 चैनल्स हैं इस वक्त ऑन एयर पेमरा से अप्रूव्ड, उनमें से सिर्फ 3 चैनल दिखा रहे थे कि ये जो मुजाहरे हो रहे हैं इनिशियली। बाद में जब उन्होंने देखा कि वो सारी रेटिंग वो ले रहे हैं, तो फिर दूसरे चैनल्स ने भी थोड़ा थोड़ा दिखाना शुरू कर दिया। उससे पहले उन्हें बाकायदा ऑर्डर थे कि इसे टून डाउन करें इन मुजाहरों को, लेकिन आप कब तक टून डाउन कर सकते हैं? आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, लोगों ने अपने कैमरा ऑन किए और लोगों ने लाइव कर दिया, लोगों ने हर चीज दिखा दी। तो ये सिचुएशन जो है, ये तकलीफ होगी लोगों को, उन लोगों को तकलीफ होगी जो जिन्होंने इसे, जो खानदान गुलामा बन के बैठ गए थे। अब इससे बड़ी और गुलामी की सबूत हमारे पास क्या है, सॉरी टू से, कि जनाब पूरी पंजाब असेंबली में कहते हैं जी 200 एमपीए हैं हमारे पास, लेकिन 200 एमपीए में जब वज़ीर-ए-आला पंजाब बनने की बात आए तो और कोई बंदा इस काबिल नहीं है कि वो वज़ीर-ए-आला पंजाब बने। हाँ, मियां शहबाज शरीफ साहब का बेटा और मियां नवाज शरीफ साहब का भतीजा ही वज़ीर-ए-आला पंजाब बने। ये बात करनी मुश्किल है, लेकिन करनी पड़ेगी ना किसी को। मुझे जो आपको जो इससे तकलीफ फील हो रही है, जो आप मेरे बारे में नफरत फील कर रहे होंगे कि मैं आपके एक लीडर की एक गलत बात पे बात कर रहा हूं, मैं जब पीटीआई के खिलाफ बात करता हूं तो उन्हें भी इसी तरह तकलीफ होती है। पीटीआई वाले भी मुझसे को खुश नहीं है, वो भी बड़े नाराज होते हैं। पीटीआई का अगर क्वेश्चन करेंगे तो मैं उनकी भी खामियां अभी गिनवा देता हूं आपको कि उन्होंने पिछले 1 हफ्ते में 10 दिन में क्या क्या गलत काम किए हैं और गलत हरकतें की हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम तजिया कार हैं, हमें एग्जिस्टिंग करंट सिचुएशन जो होती है उस पर तजिया करना होता है। इस वक्त मुल्क में हो क्या रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, और आइंदा 4 दिनों में इसका आगे आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे। हमारा तजिया ना 100% सही होता है ना 100% गलत होता है, क्योंकि ये इम्कानात की दुनिया है, इसमें कुछ भी मुमकिन है। तो हम इम्कानात की बात करते हैं।
सीधी तो बात ये है कि लोग जो है अब बहुत ज्यादा पक गए हैं। ये जो डायनेस्टिक ये जो चलती आ रही है ना, भुट्टो को मरने नहीं दे रहे, मुशरीफ फैमिली के बंदों से आगे किसी को आने नहीं दे रहे, लोग इस डायनेस्टी की जो पॉलिटिक्स है उससे बहुत तंग आ गए हैं। वो कहते हैं भाई हमारा बच्चा कब प्राइम मिनिस्टर बनेगा, मेरा बच्चा जो है जिसके के ऊपर मैंने लाखों डॉलर लगाए हैं, स्टैनफोर्ड हार्वर्ड से पढ़ के आ गया, वो क्यों ना प्राइम मिनिस्टर बने इस मुल्क का। भाई जिस तरह के जिना साहब थे, जिना साहब उस जमाने में लिंकन्स इन से पढ़ के आए थे, तो जी फिर उन्होंने कौम सारी को बनाया, उन्होंने जो है ये ऐसे मुल्क को बनाया, तो ये इनके जो है बच्चे, यही अगर वो कहते हैं ना हमारे पंजाबी की एक वो मुहावरा है, अन्ना वंडे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपनियां नू दे, ते मुड़ मुड़ के अगर यही अपनों को ही ये बिलावल ते मतलब है ये मरियम ते हमजा
नहीं, पीछे वो आसफा तैयार हो रही है।
हाँ जी,
हाँ जी
तो इन्होंने ही आना है, तो फिर मेरा और आपका बच्चा जो है वो किस वक्त प्राइम मिनिस्टर बनेगा भाई? तो वो बात फिर बिल्कुल ठीक है ना, जो तराना हमने चेंज कर दिया है, ये देश तुम्हारा है, हम है खामखा इसमें, हम तो फिर खामखा ही है ना जी।
और एक और खुशखबरी की बात है कि वो बख्तावर का भी एक बेटा पैदा हुआ है और उसका नाम सप्तैन महमूद जरदारी चौधरी रखा गया है। तो बिल्कुल हौसला रखें जनाब, इनके पोते
जो शुक्र है भुट्टो नहीं लगाया उसके साथ।
और इधर नवाज शरीफ फैमिली का जो फार्मूला है वो मियां साहब चौथी दफा वज़ीर आज़म बन के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, उसके बाद मरियम नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है और उसके बाद जुनैद सफदर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। वो अभी से जुनैद सफदर को ये कहती है कि बिलावल अपने नाना की शबी है और तुम अपने नाना नवाज शरीफ की शबी हो, अभी से उनकी ये ट्रेनिंग हो रही है।
वाह क्या।
नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट कॉल जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, नेक्स्ट कॉल जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम
जी। माजिद भाई आप
कौन बात कर रहे हैं?
जी फारूक हाशमी बोल रहा हूँ।
जी फारूक भाई फरमाइए।
मैं फयाज भाई को मुबारकबाद देता हूँ कि ये जर्नलिज्म का हक अदा कर रहे हैं जो कि मुश्किल है आजकल के दौर में। और दूसरा मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है कि अप्रैल 9 को 11 से 12 बजे तक प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या हुआ है, तो थोड़ा अगर उसका कुछ बता सकते हैं बहुत शुक्रगुजार।
बहुत शुक्रिया सर।
उसका भी बताएं फियाज भाई। और आज ये जो बीबीसी की बड़ी डैमिंग एक जो रिपोर्ट आई है इसके बारे में क्या कहते हैं आप? सच है झूठ है? क्योंकि बीबीसी भी मुझे लगता है बहुत ही एंटी
बीबीसी को बहुत बुरी तरह उसने रिबटल भेजा है अपने, हमारे ISPR ने भी भेजा है, गवर्नमेंट ऑफ उस वक्त जो इमरान खान के जो तर्जमान थे उन्होंने भी भेजा है। पर उन्होंने कहा है कि बीबीसी ने इंटेंशनली ये किया है सिर्फ वहां ये सिचुएशन क्रिएट करने के लिए खामखा। और आपको पता है ना कि बीबीसी के उस रिपोर्ट की वजह से, मैं आसिफ फारूकी मेरा दोस्त है जो रिपोर्टर है, शरीफ आदमी है, सारी जिंदगी उसने जसारत के लिए रिपोर्टिंग की। आप कुछ अरसे वो बीबीसी से है तो जसारत में आपको पता है सऊद साहिर साहब थे और बाकी खालिद अजीम और ये आसिफ फारूकी और जफर शेख ये सारे जमात इस्लामी के बंदे थे। जसारत था ही जमात इस्लामी का, तो वो थे जमात इस्लामी माइंडेड। लेकिन बीबीसी में जाने के बाद फिर वो जैसी इदारे की जरूरत है वो उसके मुताबिक कर रहे थे। उन्होंने गलत किया रिपोर्टिंग और जितना उन्होंने नक्शा खींचा है उसके बाद उनकी ये स्टोरी बाउंस बैक हुई है। इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर बीबीसी के रिकॉर्ड पे। लेकिन बीबीसी को अब कुछ अरसे से मैंने फील किया उन्हें परवाह भी नहीं रही कि हमारी कितनी स्टोरीज जो है वो
बहुत सारी गलत वो खबरें छाप चुके हैं उससे
पहले भी वो छाप चुके हैं। और अब इस अगर ये इंटरनेशनल कोई कॉन्स्पिरेसी है तो फिर तो उनका ये फर्ज बनता था, उन्होंने अमरीका को कंधा देना था, उन्होंने वो कंधा दिया। हालांकि वहां इमरान खान ने बड़ी स्मार्ट मूव ये की, मेरे ख्याल में इमरान खान अब भी उनके माइंड के साथ खेल रहे हैं, उनके साथ एक एक स्टेप पे वो बिल्कुल देख रहा है और वो उनको टेंशन देना चाहता था अपने जो मुखालिफीन थे। आप देखें असेंबली में भी उसने, उसे पता था आखिर में हमने ये करना है, लेकिन उसने जानबूझ के उन्हें 12 बजे तक लेके गया। जब रात के 11 बजे तो सब इदारों को ये मसला पैदा हो गया कि अब ये तो कुछ नहीं कर रहा तो इसका मतलब है ये कुछ और करने लगा है। तो फिर वो इदारे हरकत में आए और उन्होंने हाईकोर्ट भी खोल ली, सुप्रीम कोर्ट भी खोल ली और बाकी उन्होंने इस्लामाबाद की सड़कों पर ट्रक भी दौड़ाने शुरू कर दिए। तो उस वक्त इमरान खान ने उससे पहले ही बुलवाए हुए थे पीएम हाउस में जर्नलिस्ट और उनसे पूछा, आराम से उनके साथ बात कर रहा था और कोई, उन्होंने कहा कि कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं थी और उसने कहा जी हम वोटिंग कराएंगे ये वो। उसे वो जानबूझ के ये बात उनके सामने इसलिए कर रहा था कि वो पीछे रिपोर्ट करते थे जर्नलिस्ट अपने अपने इदारे को और वो चीज आने या चली जाती थी कि इमरान खान कह रहा है कि हम वोटिंग कराएंगे। इसके बावजूद उनके हाथ पांव इतने फूले हुए थे कि ये 12 बज गए हैं, अगर इसने ना किया तो फिर क्या होगा। तो उस घबराहट में वो जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खुल गए तो इमरान खान ने जर्नलिस्टों से पूछा कि कोई इदारा रह गया है जो मेरे खिलाफ नहीं खड़ा हो गया? उन्होंने कहा जी नहीं, सारे पहुंच गए हैं, कोई आपके खिलाफ नहीं रह गया, सारे हो गए हैं। इमरान खान ने उसी वक्त डायरी उठाई, उसने कहा दैट्स इट, स्पीकर को कहा जाओ आप जो है याद सादक को दो। और मैं यही मैं कौम को दिखाना चाहता था कि कोई भी इदारा मेरे साथ नहीं रहा, आखिरी वक्त पे सारे जो हैं वो दूसरी लाइन पे खड़े हो गए हैं। अब वो जो इमरान खान ने शॉट खेली उनके साथ, वो अभी तक इस वक्त आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बाकी जो लोग उस वक्त मुतरक हुए थे, अतर मेनुल्ला ने तो दूसरे दिन उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश की है। अतर मेनुल्ला ने जिस बंदे ने उसके पास एप्लीकेशन दी थी कि इमरान खान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिमूव कर रहा है, तो उस बंदे की सिर्फ रिजेक्ट नहीं की वो दरखास्त, साथ उसको मौलवी इकबाल हैदर एडवोकेट को 1,00,000 रुपया जुर्माना भी किया है कि तुम एक फेक बात मेरे पास क्यों लेके आए हो, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, इमरान खान तो कोई आर्मी चीफ चेंज नहीं कर रहा था और तुमने खामखा रात को 11 बजे यहाँ मुझे जो है कहीं से हुक्म आया और मैंने आके अदालत खोल ली, वरना आम आदमी के लिए तो नहीं खोलते, कहीं से हुक्म आया होगा, तो तुमने ये क्या फेक मेरी नींद भी खराब की और ये सारा और हमारी इंप्रेशन भी बाहर खराब किया, 1,00,000 रुपया जुर्माना हुआ है उसको। ये अतर मिनुल्ला ने अपने उस रात को 11 बजे अदालत खोलने के वाले मामले को थोड़ा सा कवर करने की कोशिश किया, लेकिन अब कवर नहीं हो सकता, जो आप कर चुके हैं वो कर चुके हैं। हर बंदा पाकिस्तान में पूछ रहा है कि भाई मेरे लिए भी 12 बजे खोलो अदालत, मुझे भी इंसाफ दो, लाखों केसेस पाकिस्तान भर की अदालतों में पड़े हुए हैं, मेरे लिए तो आप कोर्ट नहीं खोलते, लेकिन खानदान इशराफिया या खानदान शरीफिया आ जाए तो उसके लिए आप रात 11 बजे भी कोर्ट खोल के बैठ जाते हैं। इमरान खान ये दिखाना चाहता था और बात लेटर की है, लेटर की तरफ कोई आ नहीं रहा, लेटर का कंटेंट मैंने आपको पढ़ के अभी सुना दिया, कंटेंट लेटर का नहीं पढ़ के सुनाया, लेटर के कंटेंट के हवाले से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है और उस मीटिंग का जो एलामिया जारी हुआ है, फाइनल उस मीटिंग का कंक्लूजन जो उन्होंने दिया है वो मैंने आपको पढ़ को सुना दिया है।
शहबाज शरीफ साहब नहीं मान रहे तो इसका मतलब है कि आर्मी चीफ भी स्टूपिड है और बाकी के सारे जो चीफ हैं वो भी स्टूपिड हैं, क्योंकि अगर उन्होंने लेटर पढ़ के ये बात कही है तो फिर तो कुछ होएगा ना लेटर में। दे आर नॉट ऑल स्टूपिड, राइट? दे आर वेरी
वाइज। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में उस कमेटी का मतलब ही नेशनल सिक्योरिटी पे बात करना है और नेशनल सिक्योरिटी।
एग्जैक्टली, हाउ कैन यू कॉम्प्रोमाइज
मीटिंग में ओरिजिनल लेटर दिखाया गया है
तो हाउ कैन यू कॉम्प्रोमाइज नेशनल सिक्योरिटी, राइट?
हाँ, उस लेटर को देखने के बाद उन्होंने प्रेस हैंडआउट जारी किया है और फिर दो दिन बाद जब मीडिया ने बहुत शोर किया कि ये फेक है तो फिर DGISPR जो है मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर, अब आर्मी चीफ खुद तो नहीं आते आने, वो DGISPR